हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकर्णरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादाश्च सहकर्णललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतदेवी, प्रणमामि हरिभि वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 7 इसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवान के विषय में, भगवान श्री कृष्ण हमें अपने विषय में इस अध्याय में बताते हैं, और आज अब तक तो भगवान देवताओं के विषय में बता रहे थे, देवताओं के धाम में कौन जाते हैं और कौन होते हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, क्यों करते हैं, इच्छा के कारण करते हैं। ये टॉपिक आज भगवान ने श्लोक नंबर 23 में खत्म किया, और आज श्लोक नंबर 24 में भगवान निर्विशेषवादियों के विषय में बता रहे हैं, जो इम्पर्सनल होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं अव्यक्त तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ति माम बुद्धयः परं भावं अजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ति माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ति माम बुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम् शब्दात् अव्यक्तम्। अव्यक्त का मतलब होता है अप्रकट, यानी जो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है या अप्रकट होता है, उसको बोलते हैं अव्यक्तम। और व्यक्ति का मतलब होता है स्वरूप को, यानी जो दिखता हो, जो प्रकट हो, ठीक है। अव्यक्तम व्यक्ति, व्यक्ति आपन्नम, आपन्नम मतलब प्राप्त हुआ। अब वो मन्यन्ते, वो सोचते हैं, मन्यन्ते मतलब ऐसा सोचते हैं, कौन माम यानी मुझको, कौन सोचते हैं ऐसा अबुद्धया, अबुद्धया, बुद्धया मतलब जिनके पास बुद्धि हो, और अबुद्धया मतलब जिनके पास बुद्धि नहीं हो, यानी अल्पज्ञानी व्यक्ति। बहुत ही सुंदर भगवान कह रहे मन्यन्ते माम अबुद्धया, जो अबुद्धि लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। पहले मैं निराकार था और अब मैंने ये साकार स्वरूप था, अव्यक्तम वास्तव में वो अव्यक्त है, व्यक्तिम आपन्नम, लेकिन अभी उन्होंने यह स्वरूप धारण किया, यानी भगवान का नेचुरल जो फॉर्म है वो क्या है, निराकार है, लेकिन संसार में आते हैं कोई ना कोई फॉर्म स्वरूप धारण करते हैं। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम भावम अजानंतो, परम मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होता है, भावम मतलब जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ नेचुरलिटी है, जो भाव है भगवान का, जो सत्ता है, अजानंता, अजानंता मतलब जानंती मतलब जानते हैं, अजानंता मतलब नहीं जानते हैं। मम अव्ययम, मम मतलब मेरा, अव्यय मतलब अनश्वर, यानी कि वो ये नहीं जानते कि मैं अव्यय हूँ, अनुत्तमम, अनुत्तमम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ मैं, अनश्वर हूँ मैं, परम हूँ, ये नहीं जानते। वो बुद्धिहीन होते हैं, अबुद्धि होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ और कभी कभी ये साकार स्वरूप धारण कर लेता हूँ। अनुवाद देखिए, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से तात्पर्य समझाएंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है। कहाँ कहा जा चुका है? श्लोक नंबर 23 जो हम लास्ट कल पढ़ा था उसके ना पहली लाइन में देखो, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां। अल्पमेधसां मतलब मेध मतलब बुद्धि, अल्प मतलब थोड़ी, जो बहुत ही थोड़ी बुद्धि वाले यानी जो बेवकूफ हैं वो क्या करते हैं, देवान देव यज देवताओं की उपासना करते हैं। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं कि देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ पहले ही कहा जा चुका है और इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। अव्यक्तम जो निराकारवादी होते हैं, निरशेषवादी होते हैं, उनको भी अल्पज्ञ कहा गया। अब देखो अल्पज्ञ है या ज्ञानवान है, वो हम सब किससे सोचते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ये कितने ज्ञानी हैं, सब निराकारवादी हैं। अक्सर मुझे लोग बोलते हैं इस तरह कि ये कितना ज्यादा ज्ञानी है, ये लोग कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं, सब निराकारवादियों में जाते हैं। और आप देखो हरे कृष्णा वाले होते हैं, वो थोड़ी क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब है कि अब उनके पास इतना ज्ञान है तभी वो उधर गए हैं, आप लोग के पास इतना ज्ञान नहीं है तभी अभी आप लोग विग्रह सेवा करते हो। अब लेकिन अगर कोई अल्पज्ञ है या कोई बुद्धिमान है तो उसको भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए ना। अब इस अध्याय में भगवान ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दिया, भगवान ने बस अभी मतलब क्लियर क्लियर बोलना शुरू कर दिया। 19 में क्या बोला, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान ने ज्ञानी के लिए यही श्लोक बोल दिया। ज्ञानवान वास्तव में अब उसको कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं, सा महात्मा वो महात्मा बन गया। कौन, वासुदेव सर्वम इति, जो ये सोचता है कि वासुदेव यानी मैं भगवान श्री कृष्ण ही, सर्वम इति समस्त कारणों के कारण है और माम प्रपद्यते मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा है, वो बहुत दुर्लभ है। सो दुर्लभम, बहुत बहुत दुर्लभ है, वेरी रेयर है, इसलिए आपको हर जगह दिखेगा नहीं, इसलिए आपको भीड़ दिखती है देवताओं के पुजारियों की, और इसीलिए आपको महाभीड़ दिखती है निर्विशेषवादियों की। ये भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम भगवान के श्लोकों को एज इट इज पढ़ रहे हैं, ठीक है। भगवान ने क्या कहा, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और उसके बाद जो ज्ञानवान नहीं है वो क्या करते हैं, भगवान कहते हैं वो तो कामस्थस्य हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, उनका हित हो गया, उनका ज्ञान जो है वो किडनैप हो गया है, और वो क्या करते हैं अन्य देवताओं के, दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं इतनी भरी हुई हैं कि भक्ति नहीं करना चाहते, वो बिजनेस करना चाहते हैं, देवताओं से जाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गिड़गिड़ाते हैं और उसकी बदली में देवताओं को पूजा समर्पित करते हैं। यो यो याम याम तनम भक्त श्रद्धा, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा भी मैंने दी उनको, और उसके बाद जो फल है वो भी मेरे द्वारा ही उनको प्राप्त होता है। भगवान ने कहा सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। जो श्रद्धा है वो भी मेरे द्वारा, और जो कामान उनकी लभते ख्वाहिशें जब उनकी प्राप्त होती है वो भी मेरे द्वारा। लेकिन बता दिया 23 में कि ये सब तो बहुत ही कम समय के लिए टेम्परेरी उनको सहूलतें प्राप्त होती हैं, इसलिए। और दूसरा ये कि क्योंकि देवताओं भी अनश्वर है, इसलिए उनका अबाउट जो उन देवताओं का जो लोक है वो भी तो अनश्वर है, और वो जब इस नेचुरल लोक में जाते हैं तो वापस से उनको गिरना पड़ता है पृथ्वी पर, इसलिए उनको कहा अल्पमेधसाम। और आज भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम अबुद्धया, जो अबुद्धि लोग होते हैं वो भी ऐसे बोलते हैं कि मैं पहले निराकार था अब मैंने साकार स्वरूप धारण किया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं है, दिख रहा नहीं है, ये कौन बोल रहा है, अगर उनका कोई स्वरूप नहीं है तो ये गीता कौन बोल रहा है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो बातें कर रहे होते हैं, भगवान बता रहे होते, फिर भी बोलते नहीं, भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुना आचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत ही उपयुक्त श्लोक कहे हैं, स्तोत्र रत्न 12। त्वं शील रूप चरिताय परम प्रकृष्टाय ही सत्वेन सात्विकिताया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। अर्थात हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान स्वरूप में जानते हैं, त्वाम शील रूप चरित परम कृष्ट, यानी जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो विद्वान है, जो व्यास तथा नारद जैसे भक्त हैं, वो आपको किसमें जानते हैं? शील रूप है, आपको वास्तविक स्वरूप में जानते हैं, जानते हैं कि भगवान का एक स्वरूप है। और सत्वेन सात्विकतया प्रबलाइश्च शास्त्रे, और जो मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के स्वरूप में समझ सकता है। अब जो जो मनुष्य है उसको शास्त्र पढ़ के ये पता चलेगा ना कि भगवान वास्तव में स्वरूप है, लेकिन ये वो लोग फिर भी शास्त्र पढ़ के भी समझते नहीं है, गीता पढ़ के भी वो समझते नहीं है कि भगवान जो है वो स्वरूप है। आगे आगे राम यमुनाचार्य जी कहते हैं, प्रख्यात दैव परमार्थ वेदामतेश, वो लेकिन फिर भी किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में है ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ सकते, वो जानते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, बुद्धि लगाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वास्तव में भगवान क्या है। इसलिए यहाँ आगे कहते हैं, नए वासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोधुम, ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ सकते। वो बहुत बहुत शास्त्र, भगवान ये भगवान जो है ना वो नॉलेज का विषय नहीं है। भगवान ने कह दिया कि ना हम वैदार न तपसा ना दाने न चेष्या, ना मैं वेद के अध्ययन से समझा जा सकता हूँ, ना तपस्या से जाना जा सकता हूँ, ना दान देने से जाना जा सकता हूँ, और ना ही वेद पढ़ने से, ना हम वेद न तपसा ना दाने न चेष्या, और ना ही पूजा करने से भगवान को समझ सकते हैं। भगवान ऐसा विषय नहीं है कि हम उनको किसी यांत्रिक विधि से समझ सकें। तो वास्तव में क्या है, भगवान को समझने के लिए एक और ही तरीका है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म संहिता क्या कहता है, वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ मात्म भक्तो, वेदों के द्वारा जिनको जानना अत्यंत ही दुर्लभ है, कठिन है, लेकिन अदुर्लभ आत्म भक्तो, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे उनके द्वारा जाना बहुत ही ईजी है, अदुर्लभ बहुत आसान है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ना केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं, और उनके लिए ईश्वर के से साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। यानी कि खाली देवताओं के उपासक ही बेवकूफ नहीं है, वो लोग जो अध्ययन करते रहते हैं शास्त्रों का, बहुत बहुत शास्त्रों में कीड़े बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकते, समझो उनके लिए असंभव है, क्योंकि प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है उनका। वास्तव में भक्तों, शास्त्र पढ़ने से भगवान को नहीं समझा जा सकता, लेकिन जो शुद्ध भक्तों का संग करते ना हम, तो शुद्ध भक्त हमें भगवान से मिला देते हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज, और जब कृष्ण और गुरु की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है तो हमें भक्ति का बीज प्राप्त होता है, और फिर उस बीज को जब हम श्रवण और जप का जल और ये सब सींचते हैं उसको, तो फिर क्या होता है, उस बीज में से भक्ति लता का एक फूल निकलता है। तो ये एक अलग क्रिया है, उसको हम इस तरह से भौतिक संसार की क्रियाओं के अनुसार नहीं कर सकते, ये हृदय की बात है। जब हृदय में कृष्ण का प्रेम उत्पन्न होता है शुद्ध भक्तों की संगति से, हम श्रवण करते हैं भगवान के कथाओं का और भगवान की लीलाओं का, उसके बाद जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब कहीं जाकर हृदय में ये बात स्फुरित होती है कि भगवान वास्तव में कोई ये नहीं है, निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं, उनका स्वरूप है, वो प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धयः बताए गए, माम अबुद्धयः। भगवान ने क्या कहा, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ति माम बुद्धया, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंचती है। तब किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1, कैंटो 1, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 11 में ऐसा बताया गया है, जिसमें कहते हैं, वेदव्यास जी बताते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, के जो वास्तव में तत्वदर्शी है वो भगवान की तीन फेस बताते हैं। शुरू में है जिनकी नॉलेज थोड़ी होती है, वो भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म समझते हैं, जो कण कण में व्याप्त है। उसके बाद और आगे जब प्रगति करते हैं तो वो समस्त हृदयों में बैठे हुए परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, और अंतिम गति क्या है, भगवान इति शब्द थे, वास्तविक स्वरूप भगवान का जब समझ जाते हैं तो समझो उन्होंने हर एक चीज को समझ लिया, यानी वो वास्तव में तत्वदर्शी होते हैं जो भगवान तक जाते हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीव आत्मा है। श्री प्रभुपाद जी बोलते चलो तुम निर्विशेषवादी जो हो, वो निर्विशेषवादी का जो आचार्य है, जो उनकी तो बात मानो, हमारी बात नहीं मानते हो, कम से कम उनकी बात तो माननी चाहिए ना, जो जिस जिसका आप फॉलो कर रहे हो। अब निर्विशेषवादियों के जो परम आचार्य हैं वो हैं शंकराचार्य, पूर्वगामी जो आचार्य हैं वो शंकराचार्य। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, तुम बेवकूफ बन गए हो, बहुत ज्यादा बेवकूफी, ज्यादा और करने की आवश्यकता नहीं है। अब सब कुछ काम अपने उल्टे सीधे छोड़ो और क्या करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तो लेकिन फिर भी वो मानते नहीं, अपने आचार्य की भी बात मानते नहीं है। और यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वो अपने पूर्वगामी शंकर आचार्य का अनुसरण नहीं करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि कृष्ण ही परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवती तथा वसुदेव के पुत्र हैं और राजकुमार हैं, या कोई शक्तिमान जीवात्मा है, यानी कि भगवान नहीं समझते कृष्ण को, बल्कि सोचते हैं कि अब इस संसार में आए हैं, इनके बेटे हैं देवकी और वासुदेव के, और वो फिर बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ली, इसलिए सारे राक्षसों को मारा, लेकिन भगवान नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर श्लोक के विषय में कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 9.11 में भी इसकी बात सना की गई है। चैप्टर 9 वर्स नंबर 11 में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं अजानन्तो ममव्ययम् अनुत्तमम् लोको मामजम् अव्ययम्। बहुत ही सुंदर भगवान कहते, जब मैं संसार में आता हूँ और मनुष्य तन धारण करता हूँ, तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो समझते हैं कि शायद मैं वास्तव में निराकार हूँ, लेकिन अभी मैंने ये भौतिक शरीर धारण किया है, तो फिर मैं भगवान नहीं हूँ, ये ऐसे ही मैंने ये स्वरूप धारण किया, स्वरूप की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। अवजानन्ति मामूढा मानुषीम तनुमारण, वो मुझे जानते ही नहीं है। जब मैं मनुष्य का तन धारण करता हूँ तो फिर वो क्या करते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं साकार स्वरूप में भी, साकार भी मेरा रूप है, निराकार भी मेरा रूप है, भगवान का जो नित्य धाम में मैं जो होता हूँ वो भी मैं हूँ, और जो कण कण में व्याप्त है निराकार स्वरूप वो भी मेरा है, और जो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है वो भी मैं हूँ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल मूर्ख ही समझते हैं, भगवान कहते हैं केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है कि कृष्ण कोई साधारण है तो समझो कि वो मूर्ख है। अगर कोई कृष्ण को सरेंडर नहीं करता तो समझो कि वो मूर्ख है। अगर वो कोई कृष्ण को छोड़ के किसी और की उपासना करता है तो समझो कि वो मूर्ख है। अब देखो, इस चैप्टर में भगवान ने बार बार बुद्धिहीन व्यक्तियों के विषय में कहा है। जो देवताओं की उपासना करते हैं भगवान ने उनको अल्पमेधसा कहा, काम ऐसे ऐसे हृतक ज्ञाना कहा कि उनका ज्ञान जो है वो हरण कर दिया। और अभी निराकारवादियों को भी भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। जो अबुद्धि लोग होते हैं, बेवकूफ होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ। लेकिन भगवान ने साफ साफ कह दिया कि ज्ञानी केवल वही है जो माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तथ्य तो ये है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना अमृत विकसित करने के बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.14.21 में इस तरह से कही गई है, 29 में ऐसा कहा गया है, 10.14.29 में क्या कहा, तथापि ते देव पदाम्बुज, तथापि ते देव पदाम्बुजं पदाम्बुजत्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि अजानति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यत् एकोऽपि चिरं विचिन्वत्। अर्थात हे देव, हे प्रभु, यदि कोई आपको आपके शरण कमल की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ सकते। तथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम्, अगर आपके चरण कमलों का थोड़ा सा भी एक रंश मात्र भी रज प्राप्त हो जाए, कृपा प्राप्त हो जाए, तो प्रसाद लेशानुगृहीति एवं एवहि, तो फिर उस कृपा के कारण क्या होगा, आप भगवान को समझ सकते हो। जब भगवान की भक्ति करते हो जरा सी भी कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण भगवान है। अजानंती तत्व महीनो ही चान्य, यानी कि लेकिन फिर भी एको पिचिरम विचिन्वत, बहुत बहुत शास्त्रों का अध्ययन करोगे, बहुत बहुत वेदों का अध्ययन करोगे, मानसिक जो है वो मानसिक कहते हैं ना मेंटल स्पेकुलेशन, वो बहुत बहुत आप करोगे, विचार करोगे, लेकिन उससे भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसलिए आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके स्वरूप को समझ सकता है, भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। एक तरीका, केवल एक ही तरीका है भगवान को समझने का। भगवान ने स्वयं कहा भक्त्या माम अभिजानन्ति, भगवान ने नहीं कहा कि जो वेद पढ़ेंगे वो मुझे अभिजानन्ति करेंगे, या जो बहुत बहुत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, या जो मानसिक धर्म वो ज्यादा मन का चिंतन करेंगे वो ज्यादा, नहीं, भगवान ने साफ साफ कहा भक्त्या माम अभिजानन्ति, जो प्रेम से मेरे नाम का जप करेंगे, जो मेरी कथाओं का श्रवण करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, वो मुझे जान सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप के प्रारंभ से कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। एक तरीका बताया भगवान ने, एक प्रोसेस बताया श्री प्रभुपाद जी ने कि जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, भौतिक आसक्ति और भौतिक मलिनताएं समाप्त हो जाएंगी और हम भगवान को समझ सकते हैं। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना हुआ है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। अब यहाँ पर जो निर्विचारी साधु है ना, वो क्योंकि भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते, वो सोचते हैं कि ये भौतिक तत्वों का बना हुआ है, और वो जो कार्य करते हैं और जो कुछ भी उनका नाम गुण लीलाएं जो भी है वो सब माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते हैं। ये वाले जो बोलते ना माया है, माया कुछ तो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, कृष्ण के